ये आकाशवाणी है, अब आप अपर्णा सिंह से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपत्ति मालिकों को 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। ये कार्ड 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस कदम को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना लागू होने के बाद से पिछले 5 वर्षों में 2,25,00,000 से अधिक संपत्तियों के दस्तावेज जारी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार जमीनों के रिकॉर्डों का डिजिटलीकरण कर रही है और अब तक 23 करोड़ भू आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 7 से 8 वर्षों में देश में 98% जमीनों के रिकॉर्ड डिजिटल किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 118वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और सूचना प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम के हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। विश्व बैंक ने वैश्विक वृद्धि दर अनुमान 2.7% के मुकाबले भारत के लिए 6.7% आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान व्यक्त किया है। विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में कहा है कि अगले 2 वित्त वर्षों में भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकसित हो रही बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत में मजबूत आर्थिक वृद्धि बने रहने का अनुमान जताया है। IMF ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाफना में भारतीय सहायता से निर्मित प्रतिष्ठित सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवल्लूर सांस्कृतिक केंद्र रखने का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि ये भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच गहरे सांस्कृतिक, भाषाई, ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों का भी प्रमाण है। पश्चिम बंगाल में सियालदह की एक अदालत ने कल आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले में संजय राय को दोषी ठहराया है। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। अदालत उसी दिन दोषी को सजा सुना सकती है। न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि जांच एजेंसी CBI ने जो साक्ष्य सौंपे हैं उससे साबित होता है कि संजय राय इस घटना में दोषी हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जम्मू के राजौरी जिले में रहस्यमयी मौतों के कारणों का पता लगाने के लिए एक अंतर मंत्रालय दल के गठन का आदेश दिया है। गृह मंत्रालय के नेतृत्व में ये दल पिछले 6 सप्ताह में हुई मौतों की 3 घटनाओं की जांच के लिए प्रभावित गांवों का दौरा करेगा। चंडीगढ़ में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की एक अदालत ने हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में 2017 के कोटखई बलात्कार और हत्या मामले के एक आरोपी सूरज की हिरासत में हत्या के लिए पुलिस महानिरीक्षक IG जहूर हैदर जैदी और 8 अन्य पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चंडीगढ़ में CBI कोर्ट में मुकदमा चलाया गया। इस केस में 27 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। दोषी ठहराए जाने के बाद IG जहूर हैदर जैदी और 8 पुलिसकर्मियों को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि गवाहों के बयान और सबूतों के अभाव में इस केस में आरोपी तत्कालीन SP DW नेगी को बरी कर दिया गया। खोखो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 62-42 अंकों के अंतर से दक्षिण अफ्रीका की मजबूत टीम को हराकर विश्व कप 2025 के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारतीय टीम आज इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में फाइनल में नेपाल का सामना करेगी। इससे पहले भारतीय महिला टीम ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा और फाइनल में जगह पक्की कर ली। उन्होंने कल शाम सेमीफाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को 66-16 के शानदार अंतर से हराया। भारतीय महिला टीम अब आज फाइनल में नेपाल का सामना करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।